ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों द्वारा तापलेजुंग में केबल कार निर्माण विवाद, भारत के ओडिशा में अध्ययनरत प्रकृति लम्साल की मृत्यु जैसे मुद्दों पर सरकार का किया गया ध्यान आकर्षित। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों को 7 दिन के भीतर जवाब देने की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल का निर्देश। तापलेजुंग के जिला मुख्यालय फुंगलिंग बाजार और पाथीभराग क्षेत्र में लगाया गया निषेधाज्ञा। जुमला के 8 स्थानीय तह के मुकाम जुड़ गए राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क से। और रूस द्वारा यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने तापलेजुंग में केबल कार निर्माण को लेकर हो रही घटना, भारत के ओडिशा राज्य स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत प्रकृति लम्साल की मृत्यु जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में सांसदों ने कहा कि बड़े संघर्ष से प्राप्त गणतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता में वापस आने की इच्छा है तो उन्हें चुनाव लड़कर संसद में आना चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल होना सरकार की विफलता है और इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल ने मुस्लिम आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2079-80 पेश किया। बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा प्रस्तुत नेपाल प्रहरी विधेयक 2081 को धारावार चर्चा के लिए संबंधित समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक में वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी द्वारा प्रस्तुत मॉनिटोरियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन पर सामान्य चर्चा के लिए जाने का प्रस्ताव भी सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने संविधान सभा सदस्य विदुर प्रसाद साबकोटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 से संबंधित प्रतिवेदन पेश किया गया। राष्ट्रीय सभा बैठक में विधायन एवं व्यवस्थापन समिति के सभापति तुलसा कुमारी दाहाल ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 से संबंधित समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष पेश किया। इसके अलावा बैठक में भ्रष्टाचार निवारण प्रथम संशोधन विधेयक 2076 और विद्युत व्यापार विधेयक 2080 पर चर्चा की गई। आज की बैठक में सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने सभा में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा 7 दिन के भीतर जवाब देने की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले आज की बैठक की शुरुआत में सांसदों ने सभा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर सभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कराया था। साथ ही राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने कहा कि आर्थिक और प्रशासनिक पारदर्शिता में देश नकारात्मक सूची में शामिल हो गया है और इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सांसदों ने समाज में बढ़ते सामाजिक हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं की त्वरित जांच करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के खर्च में पारदर्शिता लाने और विदेश में पढ़ने जाने वाले नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फाल्गुन 18 गते रविवार को दोपहर 12:15 बजे के लिए बुलाई गई है। तापलेजुंग के जिला मुख्यालय फुंगलिंग बाजार और पाथीवरा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाया गया है। पाथीवरा में केबल कार निर्माण के मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन कार्यालय तापलेजुंग ने आज सुबह से लागू होने वाला और अगली सूचना तक प्रभावी रहने वाला प्रतिबंध जारी किया है। कल शाम फुंगलिंग बाजार में नो केबल कार पक्ष और पुलिस के बीच झड़प होने के बाद स्थिति प्रतिकूल हो गई थी, जिसके कारण प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये जानकारी जिला प्रमुख अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा द्वारा जारी सूचना में उल्लिखित है। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकेगा। सभा, जुलूस, प्रदर्शन और घेराव जैसी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होगी, ये सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है। जुमला के ग्रामीण इलाकों में स्थित गांवों तक अब यातायात की पहुंच हो गई है। स्थानीय सरकार द्वारा गांवों तक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के बाद पिछले समय से यहां के 8 स्थानीय तह के 60 मुकाम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क से जुड़ गए हैं। तिला गांव पालिका वार्ड नंबर 1 के रारा से जोड़ने वाली सड़क पर तिला नदी पर मोटरेबल पक्की पुल का निर्माण होने के बाद दुर्गम इलाके में स्थित गांव लंबे समय बाद सड़क नेटवर्क से जुड़ गया है। ये जानकारी तिला गांव पालिका के अध्यक्ष मोतीलाल रोकाया ने दी। इससे पहले यहां का जिला मुख्यालय खलंगा होते हुए करनाली राजमार्ग, जुमला नागमा सड़क खंड और नागमा गमगढ़ी मुख्य सड़क पर ही सार्वजनिक वाहनों का संचालन होता था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। तन्हू में जंगल की आग को नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन कार्यालय के सहयोग से डिवीजन वन कार्यालय ने जिले के विभिन्न नगर पालिकाओं में जंगल की आग नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। फाल्गुन से वैशाख तक जंगलों में आग लगने की संभावना रहती है, इस कारण जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले आर्थिक वर्ष में जिले में 117 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में आग लगी थी। गृह मंत्रालय ने दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न, छुआछूत जैसी घटनाओं की जांच में सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रहरी प्रधान कार्यालय में दलित डेस्क स्थापित करने और संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने के लिए पत्राचार किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता रामचंद्र तिवारी ने बताया कि प्रहरी प्रधान कार्यालय में दलित डेस्क स्थापित करके कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पत्राचार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले 77 जिलों में स्थापित दलित डेस्क को प्रभावी ढंग से संचालन और प्रबंधन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा है कि पीएसबी के मूल उद्देश्य के अनुसार प्रसारण सामग्री को और अधिक जन केंद्रित बनाकर आगे ले जाना चाहिए और इसके लिए कर्मचारियों को भी स्वयं को बदलना होगा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की आगामी कार्य दिशा से संबंधित आज रेडियो नेपाल में आयोजित कार्यक्रम में पीएसबी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, समृद्धि और आपदा से संबंधित विषय पीएसबी के प्रमुख प्रसारण विषय होंगे। उन्होंने कहा कि श्रोताओं की आवश्यकताओं और रुचियों को संबोधित करने के लिए कर्मचारियों को भी स्वयं को बदलना होगा। डॉ विष्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पीएसबी ने नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल को केवल एकीकृत नहीं किया है, बल्कि इसे एक नए संस्थान में बदलने की परिकल्पना भी की है। उन्होंने कहा कि दर्शकों और श्रोताओं को भी इस बदलाव का एहसास हो, इसके लिए प्रसारण सामग्री, प्रस्तुति और कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। भोजपुर जिले के सदर मुकाम को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ने वाले कावाखोला पर पक्की पुल का निर्माण पूरा हो गया है। हथुआगढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के रानीबास और रामप्रसाद राय गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के मानी भंजांग को जोड़ने वाले कावाखोला पर 4,62,74,000 रूपये की लागत से पुल का निर्माण किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण ड्रोन हमला किया है। इस हमले में कई जगहों पर ड्रोन के जरिए हवाई हमले किए गए, जिससे यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। यह हमला यूक्रेन रूस युद्ध के बढ़ते तनाव को और बढ़ाने वाला है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूसी सेना ने शुक्रवार रात को यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में ऊर्जा संयंत्र, आवासीय इमारतें और अन्य नागरिक ढांचे निशाने पर रहे। इस हमले के कारण कई लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अपने सुरक्षा बलों को और मजबूत करने की घोषणा की है। साथ ही यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से और अधिक सैन्य सहायता की मांग की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों द्वारा तापलेजुंग में केबल कार निर्माण विवाद, भारत के ओडिशा में अध्ययनरत प्रकृति लम्साल की मृत्यु जैसे मुद्दों पर सरकार का किया गया ध्यान आकर्षित। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों को 7 दिन के भीतर जवाब देने की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल का निर्देश। तापलेजुंग के जिला मुख्यालय फुंगलिंग बाजार और पाथीवरा क्षेत्र में लगाया गया निषेधाज्ञा। जुमला के 8 स्थानीय तह के मुकाम जुड़ गए राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क से। और रूस द्वारा यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण ड्रोन हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।